नमस्कार। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिलचस्प पहल पर थोड़ी गहरी नजर डालने वाले हैं। गुरुकुल वाटिका, ये धनुषधारी ग्रुप का एक प्रयास है। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और क्या चीज इसे मतलब बाकियों से अलग बनाती है। तो आज की इस चर्चा का मकसद क्या है? हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि गुरुकुल वाटिका की सोच क्या है, इसके पीछे जो ग्रुप है धनुषधारी ग्रुप, उसकी कहानी क्या है और कैसे यहाँ मतलब वो जो पारंपरिक जड़ों और जो आजकल के मॉडर्न एजुकेशन मेथड्स हैं उनको मिलाने की एक कोशिश दिख रही है।
बिल्कुल,
चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं उस समूह से जिसने इसे शुरू किया, धनुषधारी ग्रुप। ये काफी दिलचस्प है कि इसकी नींव 1923 में पंजाब के किसान परिवार ने रखी थी।
हाँ, मतलब लगभग 100 साल पुरानी बात।
हाँ बिल्कुल, 100 साल।
और ये सफर अपने आप में काफी मायने रखता है ना, एक परिवार जो मतलब खेती किसानी से जुड़ा था।
वो धीरे धीरे आप देखे एग्रो फूड, राइस मिल्स, फिर फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एरियाज में फैला।
हाँ,
और अब शिक्षा के क्षेत्र में। ये दिखाता है कि वक्त के साथ उन्होंने खुद को कैसे बदला, कैसे ग्रो किया, लेकिन अपनी शुरुआत को भूले नहीं, वो चीज जरूरी है।
हाँ, मतलब 100 साल का सफर, खेती से शुरू होकर आज एक बड़े मल्टी बिजनेस ग्रुप तक।
बिल्कुल, लेकिन जो जानकारी है हमारे पास वो ये इशारा करती है कि ये मतलब एक मॉडर्न बिजनेस स्ट्रक्चर होने के बावजूद अपने वो फैमिली वैल्यूज को महत्व देते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि उनका ध्यान कम्युनिटी डेवलपमेंट, रोजगार पैदा करने और अब शिक्षा पर है। आपको क्या लगता है, आजकल के कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है? क्या बिजनेस भी करें और अपनी जड़ों से जुड़े मूल्यों को भी साथ लेकर चले?
ये देखिए, वाकई एक चुनौती तो है। अक्सर क्या होता है कि जब बिजनेस बड़ा होता है तो वो स्टैंडर्डाइजेशन और प्रॉफिट पर फोकस इतना बढ़ जाता है कि वो जो शुरुआती वैल्यूज थी वो कहीं पीछे छूट जाती हैं।
सही बात है।
लेकिन यहाँ मुझे लगता है उनकी जो कृषि पृष्ठभूमि है वो शायद एक अलग रोल प्ले कर रही है। खेती सिर्फ एक बिजनेस नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो जमीन से, कम्युनिटी से एक अलग तरह की लाइफस्टाइल से जुड़ाव है। हो सकता है यही जुड़ाव उनकी वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है उसको थोड़ा बल देता हो।
तो आप कह रहे हैं कि कृषि से जुड़ाव उन्हें जमीनी हकीकत के मतलब ज्यादा करीब रखता है। क्या इसका ये मतलब है कि वो समाज के जरूरतों को, खासकर लोकल कम्युनिटी की जरूरतों को, शायद दूसरों से बेहतर समझते हैं, या ये सिर्फ एक अच्छी स्टोरी है, यू नो, ब्रांड बिल्डिंग के लिए?
देखिए, ये कहना तो हमेशा मुश्किल होता है कि ये सिर्फ मार्केटिंग है या वाकई में कमिटमेंट है। लेकिन अगर हम उनके बताए मूल्यों को देखें, कम्युनिटी, रोजगार, शिक्षा, तो ये कृषि जीवन के जो कोर एलिमेंट्स होते हैं उनसे कहीं ना कहीं मिलते हैं।
अच्छा।
जहां समुदाय का साथ जरूरी होता है, आने वाली पीढ़ी की फिक्र होती है, उनका शिक्षा में आना, खासकर प्री स्कूल लेवल पर, ये भी दिखाता है कि शायद वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस का विस्तार नहीं बल्कि उनके वैल्यूज का ही एक, कह सकते हैं, लॉजिकल एक्सटेंशन लगता है। जैसे खेत में बीज बोते हैं ना भविष्य की फसल के लिए,
हाँ,
वैसे ही बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज का भविष्य तैयार करना।
ये एक दिलचस्प नजरिया है। बिल्कुल, चलिए अब सीधे गुरुकुल वाटिका पर आते हैं।
हाँ।
ये धनुषधारी ग्रुप की पहल है। एक डे केयर और प्री स्कूल है। इनका जो बताया गया लक्ष्य है, हर बच्चे को एक सेफ, प्यार भरा और प्रोत्साहित करने वाला माहौल देना। अब ये सुनने में तो किसी भी अच्छे स्कूल का लक्ष्य ऐसा ही होता है, इसमें क्या नया है?
हाँ देखिए, सतही तौर पर लक्ष्य शायद एक जैसा लगे, लेकिन उनकी जो विजन और मिशन स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी गहराई दिखती है।
अच्छा।
विजन है बच्चों की जो क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्षमताएं हैं उनका पूरी तरह से विकास करना, और मिशन सिर्फ डे केयर या प्री स्कूल चलाना भर नहीं है बल्कि एक समग्र यानी होलिस्टिक करिकुलम देना, सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देना और ऐसा माहौल बनाना जो परिवार के लिए भी सपोर्टिव हो।
होलिस्टिक करिकुलम,
हाँ, मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करके उसमें बच्चे भर देने जैसा नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम, एक क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश है
जहाँ बच्चा, परिवार, स्कूल
सब जुड़े हों।
बिल्कुल, तीनों एक तालमेल में काम करें।
समग्र पाठ्यक्रम और परिवार सहायक दृष्टिकोण, ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जमीन पर इनका मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ फैंसी शब्द है या वाकई कुछ अलग कर रहे हैं?
देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उनका समग्र अप्रोच सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है।
अच्छा, करके सीखना,
एंटेनमेंट, लर्निंग प्लस एंटरटेनमेंट।
बिल्कुल, मतलब सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाना, शायद कहानियों से, म्यूजिक, आर्ट या जो इंटरैक्टिव गेम्स होते हैं उनके जरिए। और इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी जोर है, तो ये सिर्फ अक्षर और नंबर सिखाने से आगे की बात है।
लर्नकेनमेंट, ये इंटरेस्टिंग है। आजकल बच्चों का ध्यान खींचना वैसे ही चैलेंज है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पढ़ाई को एकदम खेल बना दिया गया है? इससे वो सीखने की गंभीरता कम होने का खतरा नहीं रहता?
देखिए, ये चिंता तो जायज है, लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है।
हाँ,
जानकारी ये बताती है कि वो मोंटेसरी और प्लेवे मेथड्स का मिक्स इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, दोनों का?
हाँ, मोंटेसरी मेथड में बच्चा अपनी स्पीड से चीजों को खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है, और प्लेवे मेथड खेल के जरिए सीखने पर फोकस करता है। तो जब इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो खेल सिर्फ मजा नहीं रहता, वो सीखने का एक पावरफुल टूल बन जाता है।
सही,
बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और वो कॉन्सेप्ट्स को शायद बेहतर ढंग से समझते हैं।
और आपने सामाजिक भावनात्मक शिक्षा यानी सोशियो इमोशनल लर्निंग SEL का भी जिक्र किया था। आजकल इस पर काफी बात होती है, गुरुकुल वाटिका इसे कैसे कर रहा है?
हाँ, SEL तो आजकल बहुत जरूरी माना जा रहा है, खासकर छोटी उम्र में।
बिल्कुल,
ये बच्चों को अपनी और दूसरों की फीलिंग्स समझना, एम्पथी रखना, दोस्त बनाना, झगड़े सुलझाना, ये सब जरूरी लाइफ स्किल्स सिखाता है। गुरुकुल वाटिका में जानकारी के मुताबिक इसे एकेडमिक्स के साथ ही मतलब बुना गया है,
इंटीग्रेटेड है।
हाँ, इंटीग्रेटेड है। और छोटे क्लासरूम ग्रुप होने का एक फायदा ये भी है कि टीचर हर बच्चे पर पर्सनल ध्यान दे सकता है।
हाँ, ये तो है।
उनकी इमोशनल जरूरतों को समझ सकता है, उन्हें ग्रुप में एडजस्ट होने में मदद कर सकता है। शायद ग्रुप एक्टिविटीज, रोल प्लेइंग, कहानियों के जरिए ये सिखाया जाता हो। ये तैयारी सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों के लिए है एक तरह से।
छोटे क्लासरूम ग्रुप और ट्रेन्ड स्टाफ, ये तो किसी भी अच्छे स्कूल के लिए जरूरी है, पर क्या ये वाकई जमीन पर उतर पाता है, खासकर जब बिजनेस को स्केल अप करने की बात आती है?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल
जी।
खासकर जब वो भविष्य में विस्तार की योजना बना रहे हैं।
हाँ,
फिलहाल छोटे ग्रुप और ट्रेन्ड स्टाफ का जो वादा है वो उनके समग्र दृष्टिकोण का एक अहम हिस्सा लगता है। छोटे ग्रुप मतलब हर बच्चे को टीचर का ज्यादा टाइम, ज्यादा अटेंशन
जी,
जो प्री स्कूल लेवल पर बहुत जरूरी है।
बिल्कुल।
और ट्रेन्ड स्टाफ मतलब वो इन मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को, मोंटेसरी, प्लेवे, SEL, असरदार तरीके से लागू कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे संस्था बड़ी होती है, इस क्वालिटी को मेंटेन करना एक चुनौती जरूर होगी।
चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं।
बिल्कुल।
किसी भी पेरेंट के लिए, खासकर छोटे बच्चों के मामले में, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी सबसे बड़ी चिंता होती है।
बिल्कुल, सबसे पहली चिंता।
हाँ, इस मामले में गुरुकुल वाटिका क्या ऑफर कर रहा है?
जानकारी के हिसाब से उन्होंने इस पर काफी ध्यान दिया है। बच्चों के लिए सेफ डिजाइन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीने के लिए आरोगा पानी है।
अच्छा।
किसी इमरजेंसी के लिए एक मेडिकल रूम है, हवादार कमरे हैं, साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं। ये सब बेसिक लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं। ये सब दिखाता है कि वो जो सेफ्टी फर्स्ट का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो उसे सीरियसली ले रहे हैं।
उनका हेड ऑफिस मोहाली में बताया गया है, SCO 1213, तीसरा तल, मंडी बोर्ड कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 65A, और वो भविष्य में और ब्रांचेस खोलने का भी प्लान कर रहे हैं।
हाँ।
ये जो फैसिलिटीज है, RO पानी, मेडिकल रूम वगैरह, क्या ये आजकल प्री स्कूलों में एक तरह से स्टैंडर्ड नहीं बन गई हैं? इसमें क्या खास है?
आप सही कह रही हैं कि कई अच्छी संस्थाएं ये सुविधाएं देती हैं, लेकिन यहाँ इसे उनके मिशन के साथ जोड़कर देखना चाहिए।
अच्छा।
उनका मिशन सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि एक सुरक्षित और परिवार सहायक माहौल बनाना है। तो ये सुविधाएं उस माहौल को बनाने और पेरेंट्स का भरोसा जीतने में मदद करती हैं। जब माँ बाप को पता होता है कि उनका बच्चा एक फिजिकली सेफ और हेल्दी जगह पर है, तभी वो मेंटली रिलैक्स्ड हो पाते हैं, स्कूल पर ट्रस्ट कर पाते हैं।
सही बात है।
तो ये सुविधाएं सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी का एक जरूरी हिस्सा है। एक सेफ और आरामदायक माहौल ही बच्चों को खुलकर सीखने, खेलने और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मोटिवेट करता है।
ये बात तो सही है। अगर बच्चा सेफ फील नहीं करेगा या बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो वो सीखने पर ध्यान कैसे लगाएगा?
बिल्कुल।
तो आप कह रहे हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करता है?
हाँ बिल्कुल। एक अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट सीखने की प्रोसेस को आसान बनाता है। सोचिए, अगर क्लासरूम हवादार है, रोशनी अच्छी है, तो बच्चे ज्यादा सहज महसूस करेंगे। अगर खेलने के लिए सेफ और एक्साइटिंग जगह है तो उनकी फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। साफ सफाई है तो हेल्थ की चिंता कम होगी। तो हाँ, ये फिजिकल फैसिलिटीज सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये सीखने के अनुभव को शेप देने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं।
ठीक है, तो हमने धनुषधारी ग्रुप की पृष्ठभूमि, उनके वैल्यूज, गुरुकुल वाटिका के विजन मिशन, उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की। अब अगर हम इन सब जानकारियों को समेटें तो कोई गुरुकुल वाटिका को क्यों चुनेगा? इसके मेन डिफरेंशिएटर्स क्या हैं? बाजार में इतने सारे प्री स्कूल ऑप्शंस हैं।
देखिए, जानकारी के आधार पर कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, जैसा हमने शुरू में बात की थी, इसका वो फैमिली वैल्यूज से इंस्पायर्ड होना और धनुषधारी ग्रुप की वो लगभग 100 साल पुरानी विरासत,
हाँ,
ये इसे एक अलग तरह की शायद स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी देता है। दूसरी बात, उनका वो जो लोकल कम्युनिटी से जुड़ाव महसूस होता है, जो शायद उनकी कृषि जड़ों से आता है, ये इसे बड़े थोड़े बिना चेहरे वाले कॉर्पोरेट चेन से अलग करता है।
लेकिन क्या सिर्फ पारिवारिक मूल्य या कृषि पृष्ठभूमि होना ही काफी है? कई बार ये बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, असल में क्या चीज इसे अलग बनाती है?
यहीं पर मुझे लगता है तीसरी और चौथी बात आती है। तीसरा, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर,
समग्र विकास।
हाँ, वो सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी बिल्डिंग, इन सबको भी उतना ही महत्व दे रहे हैं जैसा उनकी टीचिंग मेथड से पता चलता है, मॉन्टेसरी, प्लेवे, लर्नटेनमेंट, SEL। और चौथा, उनकी वो कृषि पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, यह सिर्फ एक प्री स्कूल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेंट्रिक पहल होने का दावा करता है।
ये कृषि पृष्ठभूमि वाला पहलू बार बार आ रहा है, क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं कि ये उन्हें कैसे अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ एक अनोखी कहानी है या इसका कोई ठोस असर है?
देखिए, ठोस असर तो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इसे लागू कैसे करते हैं,
जाहिर है।
लेकिन थ्योरी में कृषि पृष्ठभूमि उन्हें कुछ चीजें दे सकती है, एक जमीन से जुड़ाव और शायद लोकल जरूरतों की बेहतर समझ। वो शायद उन परिवारों की एस्पिरेशंस और चिंताओं को बेहतर समझ सकें जो बड़े शहरों के कॉर्पोरेट कल्चर से थोड़ा अलग सोचते हैं।
अच्छा।
दो, धैर्य और पोषण का मूल्य। खेती में आप बीज बोते हैं और फसल के लिए सब्र से इंतजार करते हैं, उसे नर्चर करते हैं।
हाँ।
शायद यही नजरिया वो बच्चों के विकास में भी लाते हों, हर बच्चे को अपनी स्पीड से बढ़ने देना, न कि सबको एक ही ढर्रे पर चलाना।
ये अच्छा पॉइंट है।
और तीसरा, कम्युनिटी की भावना। कृषि अक्सर एक सामुदायिक गतिविधि होती है, अगर ये भावना उनके स्कूल चलाने में झलकती है तो ये पेरेंट्स और स्कूल के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप बना सकती है।
तो ये सिर्फ गांव बनाम शहर की बात नहीं है, बल्कि एक अलग तरह के वैल्यू सिस्टम की बात है जो शायद शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के परिवारों को अपील कर सकता है।
हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश हो सकती है जो मॉडर्न एजुकेशन की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन जिसकी जड़ें पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सामुदायिक भावना में हों। यह उन पेरेंट्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक मजबूत नैतिक आधार और अपनी संस्कृति से जुड़ाव भी चाहते हैं। ये जो मेल है, पारंपरिक जड़ें और आधुनिक दृष्टिकोण, यही शायद इनकी सबसे बड़ी खासियत भी है और चुनौती भी।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
संक्षेप में कहें तो गुरुकुल वाटिका धनुषधारी ग्रुप की एक महत्वाकांक्षी पहल लगती है। ये एक प्री स्कूल और डे केयर है जो पारंपरिक, पारिवारिक और कृषि मूल्यों को, जैसे कम्युनिटी पर फोकस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको मॉडर्न चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स के साथ,
जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्नटेनमेंट, SEL।
बिल्कुल, और साथ में सेफ, वेल डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको मिलाने का एक प्रयास है। ये सिर्फ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने की जगह नहीं बल्कि उन्हें जीवन के लिए एक होलिस्टिक बेस देने का प्रयास लगता है।
ये जड़ों और भविष्य के संगम जैसा लगता है।
बिल्कुल।
एक तरफ 100 साल पुरानी कृषि विरासत, दूसरी तरफ मॉन्टेसरी और लर्नटेनमेंट जैसी नई तकनीकें।
बिल्कुल सही कहा, और यही संगम कुछ दिलचस्प सवाल भी खड़े करता है जिन पर आगे सोचा जा सकता है।
जैसे कि
एक विचार जो मन में आता है वो ये कि ये अनोखा मिक्सचर, कृषि जड़ें, फैमिली वैल्यूज और मॉडर्न एजुकेशन, भविष्य में उनके एक्सपेंशन को कैसे प्रभावित करेगा?
हाँ।
क्या वो बड़े पैमाने पर फैलते हुए भी अपनी इस लोकल कनेक्शन और पारिवारिक भावना को बनाए रख पाएंगे? अक्सर क्या होता है, एक्सपेंशन के साथ स्टैंडर्डाइजेशन हावी हो जाता है और वो जो लोकल टच है वो खो जाता है।
हाँ, ये एक बड़ी चुनौती होगी, स्केल और आत्मा को एक साथ कैसे बनाए रखें।
और दूसरा विचार, क्या ये मॉडल जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और जिसकी जड़ें कृषि और समुदाय में हैं, क्या ये भारत में एजुकेशन के दूसरे प्रयासों के लिए कोई सबक दे सकता है? खासकर उन इलाकों में जहां लोग बड़े ब्रांड्स के बजाय भरोसे और लोकल जुड़ाव को ज्यादा महत्व देते हैं, क्या ये छोटे शहरों या कस्बों के लिए ज्यादा रिलेवेंट मॉडल हो सकता है?
ये सोचने वाली बात है।
हाँ, तो ये सिर्फ एक प्रीस्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि ये जड़ों से जुड़े रहकर आगे बढ़ने, वैल्यूज को एजुकेशन में पिरोने और परंपरा और प्रगति के बीच एक बैलेंस खोजने की एक बड़ी कहानी का हिस्सा हो सकता है। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि गुरुकुल वाटिका का ये सफर आगे कैसे बढ़ता है और क्या ये अपने वादों पर खरा उतर पाता है।